अस्पताल की इमारत की ठीक सामने पार्किंग के एक कोने में एक कार खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा में उसकी खिड़कियां बंद थीं और अंदर विक्रम ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी शिकारी की आंखों में तब आती है जब शिकार पास ही हो। उसके हाथ में एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी रखी हुई फोटो थी, रैना की। उस फोटो में रैना हंस रही थी, शायद किसी फंक्शन में ली गई थी। उसकी मासूम मुस्कान अब भी तस्वीर में वैसी ही थी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर देखते हुए उस पर एक अंधेरी परछाई पड़ रही थी। विक्रम ने फोटो को अपने चेहरे के करीब लाते हुए धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है रैना शर्मा कि तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? हाँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है मेरी जान। उसने अपनी उंगली से फोटो पर रैना के चेहरे को हल्के से छुआ, जैसे किसी की त्वचा को महसूस कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, पागलपन था। तुम सोच रही हो कि वो क्या नाम है उसका, अखिल? हाँ, उसके साथ रहकर तुम मुझसे बच जाओगी? विक्रम हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी जिसमें अहंकार और गुस्सा दोनों थे। नहीं मेरी जान, मुझे सब पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। उसने फोटो को उल्टा पलटा, फिर उसे अपनी हथेली में दबा लिया। तुम उसके बिस्तर को हर रात गर्म कर सकती हो, लेकिन मेरे बिस्तर को नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने फोटो को घूरते हुए कहा। तुम सोचती हो कि तुम मुझे इस तरह ठुकरा कर अपनी जिंदगी जी पाओगी? नहीं रैना, मैं तुम्हारी ये गलती माफ नहीं करूंगा। उसका चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। वो सीट पर थोड़ा आगे झुक गया, जैसे फोटो से आमने सामने बातें कर रहा हो। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया और फिर ऐसे आदमी के साथ जुड़ गई जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं। तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो अगर चाहे तो तुम्हारी जिंदगी को ऐसे चीर के रख दे कि तुम खुद को आईने में देख भी ना सको। विक्रम की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये मॉल का काम, तुम्हारी ये मेहनत तुम्हें मुझसे बचा लेगी? पगली, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम्हें खुद से भी नफरत हो जाएगी, और वो अखिल, उसे भी देख लूंगा। पहले तुम्हें छीनूंगा उससे, फिर उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। उसने फोटो को अपनी जैकेट की जेब में रखा, जैसे कोई खजाना छुपा रहा हो, लेकिन यहां ये खजाना प्यार से नहीं, कब्जे की बीमारी से भरा था। उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, अस्पताल का नंबर था। पहले तो उसने कॉल काटने का सोचा, लेकिन फिर हल्की मुस्कान आई। चलो देखते हैं क्या नया ड्रामा है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में रैना के पिता के मॉनिटर पर अचानक हार्टरेट थोड़ा अनियमित हो गया था। डॉक्टर ने तुरंत नर्स को बुलाया और उन्हें ऑक्सीजन मास्क ठीक से लगाया। हल्की सी बेचैनी उनके चेहरे पर दिख रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से नर्स को इशारा किया, रैना को फोन करो। नर्स ने तुरंत फोन मिलाया। मॉल में रैना अभी भी अपने काउंटर के पीछे खड़ी थी, एक नई ग्राहक को साड़ी दिखा रही थी। मैडम, ये वाला शेड आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, खासकर शाम के फंक्शंस में, उसने बड़े पेशेवर अंदाज में कहा। इतने में उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से माफी मांगकर फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से नर्स की आवाज आई। मैडम, आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप तुरंत आ जाइए। रैना का चेहरा एकदम उतर गया। क्या? उसकी आवाज कांपी। जी, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। उसने बिना कुछ कहे कॉल काटी, ग्राहक से जल्दी जल्दी माफी मांगी। मैडम, माफ कीजिएगा, मुझे तुरंत जाना होगा। आप चाहें तो मेरी सहकर्मी आपको बाकी साड़ियां दिखा देंगी। उसने अपने बैग से चाबी और पर्स उठाया और तेजी से मॉल के बाहर निकल पड़ी।